जय श्री साईं राम। साईं वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
अखंड मंडलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे
धारी अंतर्यामी तुही आलोल तुलसी धारी।
ಲೋಲ ತುಳಸಿ ಧಾರಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ ಕರೋ
ध्यान दीजिएगा हमारे जीवन में माता पिता बहुत मायने रखते हैं माता पिता बच्चों के परवरिश करते हैं माता पिता बच्चों को आशीषें देते हैं आशीर्वाद देते हैं उनका लालन पालन करते हैं जब तक उनके तन में सांस है तब तक वह अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं ज्यादातर कहा जाता है देखा जाता है माता ममता की मूर्ति है मां को या मां का प्यार जिस बच्चे को ना मिले वो अपंग रह जाता है अंग तो होते हैं लेकिन मेंटली मानसिक रूप से उसका संतुलन थोड़ा ठीक से नहीं रह पाता मां की ममता बहुत आवश्यक है मां का प्रेम मां की करुणा मां का स्पर्श बच्चे के लिए बहुत जरूरी है रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं आजकल की बात अलग है कि माता पिता दोनों काम करते हैं लेकिन बच्चों के लालन पालन में मां का बहुत बड़ा रोल होता है कहा जाता है पिता जो है घर को चलाता है पिता व्यापार करता है या नौकरी करता है घर को आगे बढ़ाता है मां घर बनाती है अपनी प्रेम से अपने स्नेह से अपनी सहनशीलता से घर का वातावरण प्रेम में आनंद में होता है तो मां के कारण होता है मां बच्चे को बोलना भी सिखलाती है उसके साथ हंसती भी है रोती भी है पिता का ध्यान ज्यादा रहता है बच्चा पढ़ाई करे खेल कूद में रहे अच्छा व्यापार करे अच्छा बिजनेस करे संसारी तौर तरीके पिता सिखलाता है जब किसी का पुत्र या पुत्री पिता से आगे निकल जाए व्यापार में या बिजनेस में या नौकरी में तो पिता की छाती फूली नहीं समाती मैंने सुना है एक बार किसी कोर्ट में बाप बेटा दोनों वकील थे दोनों एक ही केस लड़ रहे थे एक दूसरे के ऑपोजिशन में पुत्र पिता को हरा देता है पिता हार के भी प्रसन्न होते हैं जिनको इतना तजुर्बा रहा है लीगल केसेस का अपने पुत्र से हार के भी छाती फुला के खड़े हो जाते हैं कि आज मैं हार गया हूं लेकिन फिर भी मैं जीत गया हूं कि मेरे पुत्र ने मुझे हरा दिया जब बच्चे आगे बढ़ते हैं संसार में सबसे ज्यादा प्रसन्नता माता पिता को होती है तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो प्रार्थना है ऐसे कभी ये नहीं बोलते भगवान तुम मेरे मामा मामी हो चाचा चाची हो दादा दादी हो माता पिता बोला जाता है माता पिता बंधु सखा माता पिता हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं माता पिता के हृदय में कभी ईर्ष्या की भावना बच्चों के लिए नहीं आ पाती सब कुछ करते किसके लिए है? बच्चों के लिए। बंधु सखा जो आपको प्रेम की डोरी से बांध देता है, बंधु है, बांधव है, तका है, मित्र है। एक अच्छा मित्र जो वो होता है जो दूसरे मित्र को उसकी कमियां बताए लेकिन सबके सामने नहीं, अलग से बोले भाई देखो तेरे अंदर ये समस्या है तो सुधर जा। आजकल की तरह मित्रता नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण को कहा जाता है बंधु चखा, क्योंकि उन्होंने सुदामा के साथ मित्रता निभाई, एक उदाहरण स्थापित किया। और भी कई उदाहरण होंगे, हम एक उदाहरण की बात कर रहे हैं। पिता परिवार को भोजन देता है, अन्य शब्दों में कहा जाए तो माता प्रेम देती है, स्नेह देती है। पिता बुद्धि का विकास करता है, माता करुणा का विकास करती है। पिता इंटेलिजेंस की ओर ध्यान देता है, माता इमोशन की ओर ध्यान देती है। कभी आपने विचार किया है अगर आकाश की ओर दृष्टि उठाएं, हजारों लाखों तारे हैं, अन्य ग्रह भी हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा उनकी या उनका महत्व ज्यादा है। अगर सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो जीवन नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश से भोजन उगता है, अर्थात के पौधे उगते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। हम उन प्लांट्स को, उन पौधों को, उन सब्जियों को, उन वेजिटेबल्स को खाते हैं, हमारी शक्ति आती है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा हमें शीतलता देता है। सूर्य गर्माहट देता है, चंद्रमा शीतलता देता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को धरती पर प्रतिबिंबित करता है, जो पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित करता है, when the moon reflects the maximum light of sun onto earth, उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। अन्यथा चंद्रमा एक पक्ष प्रकाश को बढ़ाता है, एक पक्ष प्रकाश को घटाता है। चंद्रमा शीतलता देता है, चंद्रमा को देख के आनंद आ जाता है। कई कविताएं लिखी जाती हैं जो इमोशन बेस्ड है। चंद्रमा जल को भी प्रभावित करता है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, जो ज्वार भाटाएं उठती हैं समुद्र में, वो चंद्रमा के कारण होती हैं। सूर्य दिन में है, रात में चंद्रमा है, इस प्रकार से प्रकाश बांटा गया है, इस प्रकार से हमारी धरती पे प्रकाश फैलता है। सूर्य से आए भगवान राम कहते हैं सूर्यवंशी राम, चंद्रमा से आए भगवान श्री कृष्ण कहा गया चंद्रवंशी कृष्ण। राम पहले आए, कृष्ण बाद में आए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को बुद्धि का प्रतीक माना गया, आत्मा का भी प्रतीक माना जाता है। बुद्धि, बुद्धि क्या करती है? डिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि आपको बताती है क्या सही है, क्या गलत है। बुद्धि इज इंटेलेक्चुअल पावर टू डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कहा जाता है राम पहले आए, इसका मतलब है पहले बुद्धि पे ध्यान दिया जाए। कृष्ण बाद में आए, कृष्ण बाद में आए कहने का तात्पर्य है कृष्ण चंद्रमा के प्रतीक है, चंद्रवंशी हैं, और चंद्रमा मन का प्रतीक है, बाद में मन में ध्यान दिया जाए। एक तरफ बुद्धि एक तरफ मन. हमारा पूरा जीवन इन दो चीजों पे चल रहा है, बुद्धि और मन. लेकिन रोजमर्रा के जीवन में हम मन का प्रयोग ज्यादा करते हैं. मन है क्या? व्हाट इज माइंड? बंडल ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं की गुत्थी, विचारों की गुत्थी, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स. आप एक पल के लिए शांत होकर बैठ जाएं, आपके मन में हजारों विचार कौन देंगे. इसे कहा गया स्ट्रीम ऑफ थॉट्स. मन बहुत चीजें चाहता है. आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें हीरो हीरोइन है, अगले दिन आपको सपना भी आ जाएगा आप हीरोइन बन गए हैं. आप अपनी तुलना करने लग जाएंगे. मन के अंदर विचार कहां से आते हैं, कहां से उत्पन्न होते हैं? अगर मैं कोई चीज देखता हूं, मन उसको आइडेंटिफाई करता है मेरे कई वासनाओं के साथ. आपने एक बहुत सुंदर गाड़ी देखी, हजारों कारें जा रही हैं भाई, लेकिन मन ने गाड़ी को देखा, अपने वासनाओं से संपर्क किया. आपकी वासना बहुत स्ट्रांग रही होगी कोई जमाने में गाड़ी खरीदने की, अच्छी गाड़ी के लिए, और मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, आई वॉन्ट टू एक्वायर दैट कार, मुझे वो गाड़ी चाहिए. विचार कीजिएगा, ये वासना कहां से आती है? वासना का मतलब है इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा. लेकिन आई कहां से? जन्म जन्मांतरों से, जो हम चाहते आ रहे हैं, जिन बातों का मनन करते आ रहे हैं, जिन पे बातों पे बहुत ध्यान देते आ रहे हैं, वो एक पक्की लकीर की तरह खिंच जाती है हमारे चित्त के ऊपर. चित्त क्या है? मेमोरी पावर. जन्म जन्मांतरों से अगर एक बात पे बार बार आप ध्यान दे रहे हैं, वो बात पक्की हो जाती है. आपने देखा नहीं है, टीवी में, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट आती है, क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, दिवाली सेल. बार बार उस शब्दों को सुनने से आपके मन में बात बैठ जाती है, भाई वहां सेल लेकर जाके एक बार देखना तो चाहिए, चाहे लेना देना कुछ ना हो, लेकिन फिर भी मन में इच्छा आएगी बार बार सुनने से. इसी प्रकार अगर आप कोई चीज के बारे में बार बार सोचेंगे, सुनना तो बाहर से ध्वनि अंदर आ रही है, लेकिन सोचना तो अंदर ही है, विचार तो अंदर ही हो रहा है आपके शरीर में, आपके मन में, वो विचार और तीव्र हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, इंटेंस हो जाता है, वो खुद जाता है, इट गेट इंग्रेव्ड. अब समस्या ये होती है, ज्यादातर हम मन की बात मानते हैं, मन की इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागते रहते हैं. सुबह से रात तक की हमारी यात्रा केवल इतना ही तो करती है, जो मन चाहता है वो पूरा करें, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं. बचपन से लेकर आज तक की आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हुई, इच्छाएं बदल गई होंगी, लेकिन नंबर ऑफ डिजायर, इच्छाओं की गिनती खत्म नहीं हुई है. विचार कीजिएगा, मन हमें कभी भी तृप्त नहीं होने देता, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त होंगी ही नहीं. संसार में नई नई वस्तुएं आती रहेंगी और हम मन पर नियंत्रण नहीं पा पाते. मन पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बुद्धि पर कंट्रोल. बुद्धि पर नियंत्रण उससे भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी महत्वपूर्ण है कि प्यूरिफाई द इंटेलेक्ट, हम अपनी बुद्धि को पवित्र करें. बुद्धि का काम है वो मन को बताए क्या करना है क्या नहीं करना, इज इट राइट और रॉन्ग. अगर मन कुछ भी करना चाहे, कुछ भी लेना चाहे, कुछ भी खरीदना चाहे, कुछ बोलना चाहे, मन से पहले पूछे बुद्धि से, शैल आई डू इट और नॉट. मन हावी हो जाता है ऊपर. ये एक आर्ट है, एक कला है, अपने भीतर से अपनी बुद्धि की वाणी को सुनना. उसको कहा गया अंतर्यामी, उसी को कहा गया वही परमात्मा, मान लीजिए आपके सामने 1000 शीशे हैं, मिरर्स हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं ना मिरर, जिसमें हम मोटे दिखते हैं, पतले दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, नाटे दिखते हैं। आपके सामने बहुत सारे शीशे रखे हुए हैं अलग अलग साइज के, आप उन शीशों में अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, लेकिन अलग दिख रहा है, किसी में मोटा, किसी में छोटा, किसी में लंबा, किसी में चौड़ा। हैं तो आप एक ही, लेकिन रिफ्लेक्शन अलग आ रहा है वहां से। इसी प्रकार से परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन जब संसार में लोगों को देखते हैं, उनके अंदर वही परमात्मा बसे हुए हैं, बट दे आर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली। हमें यह देखना है कि हमारे भीतर जो परमात्मा है उसको पहचानना है। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी बुद्धि पवित्र ना हो। इसलिए कहा गया पहले राम जी है, राम जी बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि को पवित्र करना है। बुद्धि को पवित्र करने के लिए हमारे को अपना जीवन राम की तरह जीना होगा। इसलिए कहा गया राम चरित्र मानस, राम के कैरेक्टर को समझना होगा, उस प्रकार से जीवन को जीने का प्रयास करना होगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब मर्यादा का पालन करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, इफ वी डू द राइट थिंग, फॉलो द राइट कंडक्ट, धीरे धीरे हमारी बुद्धि पवित्र होगी। मंत्र भी है, कहा जाता है गायत्री मंत्र को पढ़ने से बुद्धि पवित्र होती है, लेकिन आपको नित्य रोजाना पढ़ना है। जब बुद्धि निर्मल हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, उसके बाद मन की ओर ध्यान दिया जाए, मन अपने आप पवित्र होगा, क्योंकि मन बुद्धि से पूछेगा। इसलिए कहा जाता है वो करो जो राम ने किया और वो करो जो कृष्ण ने कहा, ना कि किया। विचार कीजिएगा, अगर अपनी वासनाओं को प्रभु के मार्ग पर छोड़ देंगे, हमारी प्रत्येक वासना उपासना बन जाएगी। वही मुक्ति का एक रास्ता है। वंस अगेन, वासना क्या है? इंटेंस डिजायर्स। हमें डायरेक्शन देनी है। जैसे छोटा बच्चा है, आप किसी फंक्शन में जाएं, किसी कथा में जाएं, किसी गोष्ठी में जाएं, बच्चा चुपके से बैठता नहीं है, चलता रहेगा, यहां से वहां भागता रहेगा। कहते हैं बच्चों के पांव चंचल है, बच्चा है ना, बैठ सकता नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसका रोम रोम चंचल हो जाता है। जवान व्यक्ति कहीं बैठता है क्या? उसका मन चंचल हो जाता है, अंग चंचल हो जाते हैं, रोम रोम चंचल होता है। वही व्यक्ति जब बुढ़ापे में कदम रखता है, शरीर शिथिल पड़ जाता है, पांव चल नहीं पाते हैं, तब जीभ चंचल हो जाती है। विचार कीजिएगा, बैठे बैठे बिस्तर पे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे, सोफे पे बैठे बैठे बोलते रहेंगे हमारे जमाने में तो ये होता था भैया, हम तो ऐसा करते थे, आज के बच्चों को देखो, कोई शर्म हैया है ही नहीं, कोई लाज नहीं है लड़कियों में, कुछ ये नहीं है वो नहीं है, कंप्लेन पे कंप्लेन। असल में बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, तीनों को दिशा चाहिए, तीनों को डायरेक्शन चाहिए। बच्चों के पांव चंचल, बच्चे को पता नहीं है मुझे किस तरफ जाना है। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को डायरेक्शन दें, बताएं उन्हें किस ओर जाना चाहिए। वो डायरेक्शन आपको विद्यालय से शायद ना मिले, वो डायरेक्शन आपको यूनिवर्सिटी से शायद ना मिले। कौन सा ऐसा उच्च विद्यालय है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कौन सा ऐसा महाविद्यालय जहां आपको सिखाया जाता है हाउ टू कंट्रोल योर डिजायर, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर? कौन से विद्यालय में आपको सिखलाया जाता है किस प्रकार से अपनी इच्छाओं पे, अपने क्रोध पे, ईर्ष्या पे, वासना पे, लालच पे आप नियंत्रण पाए? ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को दिशा दें, उनको डायरेक्शन दें, बच्चों को बताएं किस प्रकार से चलना। चलना तो सिखलाते हैं हम लोग, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं बता रहे किस को चलना चाहिए। हमें ये बताना है बच्चों को, बेटा अपने अंतर की वाणी को सुन, उसके रास्ते पर चल, लिसन टू योर इनर वॉइस। मन की नहीं बुद्धि की बात सुन। रोम रोम चंचल होता है जवानी में। आप क्या देखते हैं यंगस्टर्स सिटी में भटक रहे होते हैं, कई भटक भी जाते हैं लेकिन भटक रहे होते हैं, क्योंकि वे अपने मन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनका बचपन में दिशा नहीं दी गई। दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, मन की इच्छाएं कंट्रोल में नहीं थी, तीव्र थी, पूर्ति होती नहीं है कभी, फिर बोलना चालू हो जाते हैं। जीव को डायरेक्शन देनी है, चांद नेम ऑफ द लॉर्ड। अपनी जीव को एक दिशा देनी है कि परमात्मा के नाम को जपें, परमात्मा के नाम को समझें। अपनी आंखों को दृष्टि देनी है, सी गुड। जीव को बोलना है स्पीक गुड, हाथों को बोलना है डू गुड। हाथों से सेवा हो, अच्छे कर्म हो, जीव से परमात्मा का नाम हो। जीव में भी माता सरस्वती को, माता गायत्री को बैठा दीजिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूहत, प्रियम ब्रूहत, सत्य बोलो मीठा बोलो, ना ब्रूहत अप्रियम तत्य। लेकिन जो झूठ हो उसको मीठा करके भी नहीं बोलना। ये बातें वेदों में है, शास्त्रों में है। सूर्य और चंद्रमा हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं, हमारे बुद्धि और हमारा मन। बुद्धि और मन पे जरा ध्यान दीजिए, अंतर में झांके अपने बुद्धि और मन का मुआयना कीजिए, इंस्पेक्शन कीजिए, इंपार्शियल इंट्रोस्पेक्शन कीजिए रोजाना। धीरे धीरे पवित्रता अपने आप आएगी। लेकिन गायत्री मंत्र का जाप कदापि नहीं छोड़ना है। वही ऐसा महान मंत्र है जो आपको सब विघ्नों से बचाएगा, आपके अंदर पवित्रता लाएगा। इट विल प्यूरिफाई यू ओवरऑल। हमारे शास्त्र बहुत कुछ देखे हैं लेकिन उसका हम उपयोग नहीं करना जानते, हम प्रयास नहीं करते हैं, हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते हैं। फर्स्ट स्टेप है लुक इनवर्ड्स। जय साईं राम।